ఓం శాంతి. బాబా కేస్ పావన్ ఘర్ మే విశేష తపస్యా కర్నే కా పహలా టర్న్ ఆప్ యుగల్ మూరత్ భాయి బహనో కో మిలా హై. బహుత్ బహుత్ భాగ్యవాన్ బాబా కే ఆప్ సబ్ రతన్ హై జో ఐసీ తపస్యా భూమి మే జహాం సతత్ తపస్యా చల్తి రహతీ హై యహాం ఆకర్ జ్ఞాన రత్నో సే అప్నే కో భర్పూర్ కర్ రహే హై. ఔర్ జితనా జో అంతర్ముఖీ ఏకాంతవాసీ బన్ కర్ రహేగా ఉస్కో అవ్యక్త రూప్ కే బహుత్ సుందర్ సుందర్ అనుభవ్ భీ హోంగే. క్లాసెస్ తో ఏక స్థాన్ పర్ హై లేకిన్ ఆప్ సభీ బాబా కే బచ్చే ఇస్ స్థాన్ పర్ ఆకర్ కే విశేష శక్తిశాలీ అవ్యక్త పాలనా కా అనుభవ్ కర్నా, క్యోంకి వర్తమాన్ సమయ అప్నే బచ్చోం కో సర్వశక్తియో సే సమర్థ బనానే కే లియే బాప్ దాదా అవ్యక్త వతన్ సే విశేష సకాశ దేతే హై. హమ్ సబ్ జానతే హై జో జితనా బడా వీఐపీ దేశ్ మే హోతా హై ఉతనీ ఉస్కీ సురక్షా కే ప్రబంధ కియే జాతే హై. ఔర్ బాబా కహతా హై మేరే బచ్చే తో వీఐపీ హై. ఆప్ సభీ బ్రాహ్మణ బచ్చే కౌన్ హై నసా హై నా వీఐపీ హై. तो ऐसे बच्चों के लिए सुरक्षा कवच भी बाबा देते हैं. जरूरत है या नहीं है सुरक्षा की? कहेंगे हमको कौन सा भय है जो सुरक्षा गार्ड चाहिए या सुरक्षा कवच चाहिए. लेकिन इस माया के साम्राज्य में आधा कल्प तक जिसका राज्य रहा है उसके राज्य में हम सब रह करके उसकी बातों से विपरीत दिशा की ओर हम चल रहे हैं. इसलिए वो कहीं न कहीं से ब्राह्मण बच्चों पर गुप्त रीति से वार करती है, अटैक करती है. और ऐसे समय पर अगर सुरक्षा कवच नहीं पहना है, ध्यान नहीं रहा है, तो कभी भी कोई भी एक्सीडेंटल मौत हो सकती है. ब्राह्मण आत्माएं जिनको बाबा जन्मते ही एक वरदान देता है, बच्चे इस ब्राह्मण जीवन में अमर भव का मतलब ये नहीं है कि शरीर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जो बीच बीच में माया मूर्छित कर देती है, कई प्रकार से माया के वार होते हैं. और वर्तमान समय सबसे अधिक व्यर्थ संकल्पों के रूप में मायावार करती है. न चाहते हुए भी क्यों, क्या, कैसे, कब, कहां क्वेश्चन मार्क उत्पन्न होते हैं. और वो क्वेश्चंस प्रश्न बहुत बड़ा वार करते हैं व्यर्थ संकल्प के रूप में. दूसरा, आप सब जानते हो कोई भी ब्राह्मण आत्मा अगर थोड़ा सा पुरुषार्थ में फास्ट गति से आगे बढ़ती है, उसका कुछ नाम होता है, कुछ उसे विशेष स्थान प्राप्त होता है, तो उसके पीछे ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, अनुमान कई प्रकार से मायावार करती घुसती अंदर. कईयों को फिर अगर मान सान नहीं मिलता है तो नाम मान सान के पीछे हमारे पुरुषार्थ को खतरा पैदा हो जाता है। आत्मिक स्थिति का अभ्यास अगर नहीं कोई पक्का करता है तो दैहिक दृष्टि वृत्ति चंचल हो जाती है, विकारी स्वप्न, विकारी संकल्प, विकारी भावनाएं, उनसे युद्ध करनी पड़ती है, कभी कभी हार भी हो जाती है। इसलिए आज बाबा की तरफ से मैं आप सबको सुरक्षा कवच के बारे में कुछ बातें सुनाऊंगा। सबके साथ होना चाहिए, सबसे बड़ी सेफ्टी के लिए हम सबके लिए बाबा ने समय पर समय अनेक प्रकार की शिक्षाओं का कवच पहनाया है। हम सब जानते हैं बाबा की शिक्षाएं ही हमारी रक्षा करती हैं, बाबा की शिक्षाएं ही हमारे लिए रक्षा कवच हैं, और उन शिक्षाओं की समय पर समय अगर स्मृति रहती है तो कभी भी कोई भी बात आती है तो हम सहज उसको पार कर सकते हैं। इसलिए हम सब के लिए पहला सुरक्षा कवच, जिस पर विशेष अंडरलाइन करने की जरूरत है, एक है नियम पूर्वक अमृत वेले उठ जाना, बैठना योग अभ्यास के लिए। मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष होता है, कई स्थानों पर मैं प्रवृत्ति के जो दोनों पहिए, दोनों युगल मूरत ज्ञान में चलते हैं, उन्होंने अपने अपने कमरों में, अपने घरों में एक बाबा का अलग से कमरा बनाया है और बड़े सुंदर ढंग से उसको, जैसे कोई भक्ति के अंदर भगवान की कोठरी बनाते थे, छोटी छोटी कोठरियां बनती थीं, ऐसे ही बाबा के बच्चों ने बहुत सुंदर ढंग से अपने घरों में बाबा को बिठाया है, कमरा बनाया है। जिनके घरों में बाबा का कमरा है वहां तो उठाएंगे, वाह ये तो सब पास है लगता है। अच्छा जिनके घर में नहीं है वो हाथ उठाओ थोड़ा, वो भी हैं, हैं। आज संकल्प करना, अमृत वेला कहाँ करेंगे अगर बाबा का कमरा एक छोटा सा नहीं होगा तो, क्योंकि बाबा की मना है कि जिस बिस्तर पर रात भर सोए हो उसके पर बैठ के योग नहीं करो, वहां नींद के वाइब्रेशंस होते हैं, इसलिए उस स्थान से उठ करके बहुत स्नेह से, बहुत सुंदर वातावरण बना करके, वातावरण बनाने की विधियां तो बाबा ने सिखाई हैं, सेंटर्स पर मधुबन में आते हो देखते हो बहुत अच्छी सब लाल लाइट, परमधाम के सीन के लिए एक गोल्डन लाइट लगा देते हैं, बाबा की छोटी ट्रांसलाइट रख देते हैं, अच्छे अच्छे सुंदर बाबा की याद के प्यार के गीत बजाते हैं, साथ साथ वातावरण को शुद्ध बनाने के लिए अगरबत्ती वगैरह लगा देते हैं, और बड़े अच्छे वातावरण में बैठ करके बहुत प्यार से, जब सारी दुनिया सोई है हम भगवान से शक्ति लेते हैं, वरदान लेते हैं, मिलन मनाते हैं विधि पूर्वक। और जो विधि पूर्वक सवेरे सवेरे उठ करके बाबा से गुड मॉर्निंग कर लेता, पहले नंबर में मिलन मना लेता, उसके पास बाबा लाइट का सुरक्षा कवच डाल देता, हमारे ऊपर लाइट का सुरक्षा कवच आ जाता है। अमृत वेले लाइट की ड्रेस पहन लो, क्या संकल्प करो, मैं आत्मा लाइट हूं, लाइट माना प्रकाश स्वरूप हूं, एक प्रकाश स्वरूप हूं, दूसरा हल्की हूं, कोई बोझ नहीं, कोई चिंतन नहीं, कोई चिंता नहीं, जिसके साथ स्वयं भगवान है उसको चिंता करने की जरूरत है क्या भाई? प्रवृत्ति में रहते हो, कहेंगे ये चिंता है, ये फिक्र है, ये करना है, ये करना है, लेकिन बाबा ने ब्राह्मण बच्चों को कहा है आप बच्चे बन जाना, बच्चे बन जाओगे तो फिक्रातों से फ्री हो जाओगे। तो अगर कोई भी फिक्रात हो, कोई भी चिंतन और चिंता हो, तो बाबा के पास अमृत वेले बैठ के बाबा को बोलो, बाबा ये चिंता आप ले लो, मैं तो आपका बच्चा बन गया हूं। बच्चा बन करके बाबा से गुड मॉर्निंग करना, बड़े बन के नहीं। तो बच्चा बन करके जब बाबा को प्यार से सामने देखोगे, बाबा की दृष्टि लोगे, क्योंकि ब्रह्मा बाबा का जो चित्र होता है वो ब्रह्मा बाबा को याद हम नहीं करते, लेकिन उनके बीच में भ्रकुटी के बीच चमकता हुआ शिव बाबा का सितारा दिखाई देता है और बाबा से कहते हैं बाबा गुड मॉर्निंग, मैं आपका बच्चा हूँ। बड़े शुद्ध संकल्प करके बहुत हल्की ड्रेस, लाइट की ड्रेस बाबा दे देता है, और वो ड्रेस अगर सभी ने सवेरे सवेरे अमृत वेले विधि पूर्वक पहन ली तो कोई भी वार कोई भी प्रकार से माया अटैक नहीं कर सकते, किसी भी प्रकार की माया नहीं आएगी। लेकिन अलबेलापन होता है, कभी कभी हम भूल जाते हैं कि अमृत वेले बाबा ने श्रीमत दी है, बच्चे लाइट की ड्रेस पहन करके फिर कर्म क्षेत्र पर जाना, ठीक है, सुरक्षा कवच ब्राह्मणों के लिए सबसे पहला है, और इसमें अलबेला नहीं बनना, क्योंकि माया तीन रूपों में अटैक करती है। एक तो अलबेला बना देती है, अरे छोड़ो सबको तो संकल्प व्यर्थ आते हैं, कौन अभी विजयी बना है, बाबा तो कहता है आठ की ही माला पास होती है, हम कहाँ आठ में आएंगे, ऐसे ऐसे अलबेलेपन के संकल्प ब्राह्मण आत्माएं खुद ही क्रिएट कर लेती। कहाँ तो बाबा कहता है बच्चे अभी चेयर रेस चल रही है, एक भी सीट फिक्स नहीं है, रेस करो, दौड़ लगाओ, और अगर आप बहुत अधिक मात्रा में पास हो जाओगे तो बाबा कई लड़ियों की माला बना देगा, कहे कि नहीं। इसलिए कभी भी इस प्रकार की अलबेलेपन की भाषा का प्रयोग नहीं करना, बहुत शक्तिशाली संकल्प करो, बाबा मैं आपका कल्प कल्प का विजयी बच्चा हूं, अमृत वेले विजय का तिलक इस मस्तक पर लगा दो, फिर कुछ भी होगा आप कभी भी साधारण और व्यर्थ संकल्प रचेंगे ही नहीं, क्योंकि हमारे ही रचना व्यर्थ संकल्पों के रूप में हमें ही बाबा कई बार हंसी में कहता है खटमल की तरह काटती है। तो ध्यान देना, कभी भी व्यर्थ संकल्पों को आने नहीं देना, उसके लिए बाबा ने दूसरा साधन दूसरा कवच दिया है, मुरली। बाबा की रोज की मुरली, ऐसे नहीं पुरानी पुरानी मुरलियां पढ़ते रहो इधर उधर की, मुरलियां तो बाबा की वही हैं, लेकिन जिस दिन जो मुरली रिवाइज हो रही है उस दिन की मुरली का अपना महत्व है। बाबा पता नहीं उसमें कौन सा जादू भर देता है, वो आप सब जानते हो, इतने वंडरफुल जादू होते हैं मुरली के अंदर, जो प्रॉब्लम जिस ब्राह्मण के आगे आने वाली होती है उसी प्रॉब्लम का उत्तर उस मुरली में होता है। होता है ऐसा है अनुभव बहुतों को है, माताओं को है, है। तो देखना बाबा की मुरली सत्य वचन, सतगुरु के ग्रंथ के वचन सत्य वचन है, और अगर बाबा की मुरली को कोई ध्यान से बहुत भावना से भगवान पढ़ा रहा है, कोई ये दीदी नहीं पढ़ा रही है, दादी नहीं पढ़ा रही, दीदी नहीं सुना रही है, ये भगवान के महावाक्य मेरी पढ़ाई है, और भगवान डायरेक्ट परम धाम से आकर के पढ़ा रहा है, तो बड़ी ऊंची भावना से श्रद्धा से एक एक बोल अमृत के समान अंदर जा रहा है। कहते हैं ना चातक पंछी के मुंह में जब बूंद पड़ती है स्वाति नक्षत्र की तो वो मोती बन जाती है, तो ऐसे ही हम सब के मुख पर जब बाबा के बोल ऐसे आते हैं जब कानों में वो पड़ते हैं तो मोती बन जाते हैं, इतने वैल्यूबल हैं। तो जिसने बहुत प्यार से मुरली की स्टडी की, सवेरे सवेरे मुरली को ध्यान से सुना पढ़ा, उसको उसी भावना से अपने पास नोट किया, सारे दिन में कोई भी बात किसी भी तरह से माया की विकराल रूप में आने वाली होगी, उसका उत्तर आपके पास होगा। कंफ्यूज नहीं होंगे, क्या करूं कैसे करूं, बहुत बड़ी बात आ गई, इसका तो कोई समाधान दिखाई नहीं देता। बाबा कहता है, अरे बच्चे तेरे हाथ में समाधान है, कौन सा? मुरली। उसी दिन की मुरली को अगर ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपको उसी दिन आने वाली सभी प्रॉब्लम का उसमें हल मिल जाएगा। ये जादू की मुरली है, ये मुरली धर की मुरली है। बहुत भावना से, बहुत प्यार से दादी हमारी जब मुरली सुनाती है ना, जानकी दादी, अभी भी सुनाती है कभी कभी। अभी लंदन में गई ना, दो तीन दिन मुरली वहां सुनाई। हम तो कहेंगे दादी को, दादी आप इन भाइयों को भी, भाई बहनों को भी सुनाओ आकर के। बड़े प्यार से कहती है ऐसे मुरली, अरे ये मुरली मैं खा लूं, हजम कर लूं। बड़े प्यार से, दिल से, अभी कितनी बार पढ़ती है। अभी मैं शाम को गया, 7:45 मुरली पढ़ रही है, हाथ में सदा मुरली। इतनी बड़ी एज में कितनी बार मुरली पढ़ी होगी, लेकिन कितना प्यार है मुरली से, भगवान के महावाक की हमारी पढ़ाई है। तो दूसरा सुरक्षा कवच कौन सा है? मुरली। मुरली के बिना तो गोप गोपियां रह ही नहीं सकते। तो ध्यान देना, तीन प्रकार की माया, दूसरी माया मुरली के बीच में आती है, वो कौन सी? आलस्य की। एक अलबेलेपन की है, दूसरी आलस्य की है। कई बार योग करके बिस्तर पर जाएंगे, सो जाएंगे, मुरली का क्लास का टाइम पूरा हो जाएगा, या मुरली आएंगे सुनने के लिए, जबरदस्ती बहनें मुरली सुना रही हैं, प्यार से पूछ रही हैं, बता रही हैं, और धीरे 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 माया मौसी अपना काम कर लेती, अपनी मुरली अंदर अंदर चलाने लगती। इसलिए ध्यान देना, ब्राह्मणों का सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है। जिसने आलस्य को जीत लिया उसने सब विकारों को जीत लिया। इसलिए अमृत वेले के योग में और मुरली के क्लास में आलस्य को अलाउ नहीं करना। अगर आता है तो बाबा कई बार कहता था ना, सुस्ती आती है तो सरसों का तेल लगा लो, पानी छिड़क लो, फ्रेश होकर के बैठो, अच्छा अच्छा चिंतन करो, अच्छी अच्छी बातें याद करो, फिर नींद भाग जाएगी। सिर्फ शांत स्वरूप स्थिति में नहीं बैठना। शांत स्वरूप स्थिति में बैठते ही जब शांत होते हैं ना, फट से नींद आ जाती। तो ध्यान देना, आलस्य के वश होकर के अमृत तुल्य महावाक्यों को कभी भी मिस नहीं कर देना। जो अमृत तुल्य महावाक्य अंदर गए, अगर उसका किसी ब्राह्मण आत्मा ने मनन कर लिया, चिंतन कर लिया, उसके स्वरूप में स्थित हो गया, तो उसके लिए वो सुरक्षा कवच है। क्योंकि सबसे अच्छा सुरक्षा कवच है शुद्ध श्रेष्ठ संकल्पों का आभा मंडल। इस बात को समझने की कोशिश करना, हरेक ब्राह्मण आत्मा कंपलसरी ये बात समझ ले कि हम सबको अपने ही शुद्ध संकल्पों के निर्माण से अपने चारों ओर एक बहुत पवित्र आभा मंडल बनाना है, ओरा जिसको कहते हैं। आजकल पता है कई ऐसे कैमरे साइंस ने निकाले हैं जो व्यक्ति के ओरा को, आभा मंडल को कैच कर लेता है, और वो आभा मंडल बनता है हमारे विचारों से। अगर आप कोई भी नेगेटिव विचार करते हैं, टेंशन वाले विचार हैं, चिंता वाले विचार हैं, तो ये जो ओरा है चारों तरफ फेस के ऊपर, उसके अंदर धब्बे होते हैं, दाग दिखाई देते हैं, वो काला हो जाता है, सफेद नहीं रहता। तो हम सब बाबा के बच्चे इस बात को बहुत वैल्यू से, बहुत मूल्यवान समझ करके कि ये हमारे लिए सुरक्षा कवच है। क्योंकि सभी ब्राह्मण आत्माएं श्रेष्ठ शुद्ध सकारात्मक चिंतन करने का अभ्यास जरूर करो। जो कुछ गलत दिखाई देता है, नथिंग न्यू, अपनी बुद्धि को डिस्टर्ब होने नहीं दो। मुझे अपने संकल्पों को व्यर्थ की क्यू में नहीं लगाना है। जो करेगा वो पाएगा। इसलिए बहुत शुद्ध श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति का प्रयोग करो, जिसको कहते हैं शुभ भावना की शक्ति। शुभ चिंतन, शुभ भावनाएं मन वचन कर्म की पवित्रता, एक बहुत सुंदर सुरक्षा का घेरा बनाती है। हमारे चारों ओर एक बहुत सुंदर पवित्र लाइट। अगर कोई गलत विचारों से भी सामने कोई आत्मा आएगी तो ये शरीर के स्थान पर उसको लाइट दिखाई देगी, लेकिन उसके लिए अभ्यास की जरूरत है। बाबा ने कई दृश्य दिखाए थे। जब शुरू शुरू में बहने ट्रांस में जाती थी तो बाबा उनको दिखाता था कि अंत समय में जब ये ग्रह युद्ध होगा, ऐसे समय पर लोग बड़े भयानक रूप से वार करने के लिए आपके सामने आएंगे, लेकिन अगर आप बहुत पवित्र आभा मंडल के अंदर रहते हैं, बहुत पवित्र विचार आपके हैं, तो ये मिट्टी की शरीर, मिट्टी की ड्रेस उन्हें नहीं दिखाई देगी और वो लाइट की ड्रेस देख करके भाग जाएंगे। प्रैक्टिस करना, इसकी इस समय बहुत जरूरत है। बाबा ने तो आज से 70-80 साल पहले बात कही है, लेकिन वर्तमान समय जब चारों तरफ से लोग अति में, विकार अति में जा रहा है, गुस्सा अति में है, काम विकार अति में है, क्रोध अति में है, ऐसे समय पर सुरक्षा का घेरा चाहिए, क्योंकि किसी न किसी गलत भावना से लोग आज प्रयोग कर रहे हैं। तंत्र मंत्र जंत्र आसुरी विद्याओं का प्रयोग कर रहे हैं। कोई पानी दे देगा, कोई खाना दे देगा, कोई कुछ कर देगा। अगर आपने सुरक्षा कवच नहीं पहना है तो सुरक्षित ब्राह्मण जीवन में रहना मुश्किल हो जाएगा। कहीं न कहीं से माया प्रवेश करेगी। इसलिए सभी आप भट्टी में आए हो, हमारी यही शुभ भावना है। आप सब इतना अच्छा एक लाइट का कवच अपने ऊपर लेके जाना, कोई भी अशुद्ध नेगेटिव व्यर्थ विचार कैसी भी परिस्थितियों में न उत्पन्न हो, उसके लिए ज्ञान को अच्छी तरह से घोट घोट के पक्का करो। बाबा ने जो ज्ञान का इतना ऊंचा खजाना दिया है, जो ड्रामा की इतनी अच्छी बातें सुनाई हैं, हर आत्मा का अपना पार्ट है, हर आत्मा इस ड्रामा के अंदर निर्दोष है। ये ड्रामा बना बनाया है, ये ड्रामा कल्याणकारी है। बहुत अच्छी तरह से इसको पक्का करके अपने संकल्पों को बड़ा शुद्ध और पवित्र बना लो। इसके अंदर कोई भी व्यर्थ की उत्पत्ति न हो, सब अच्छा है। जब ये मत बहुत सहज सरल निश्चिंत आत्मा बन जाएगी तो वो निश्चिंत स्थिति का ओरा बनेगा, बहुत पवित्र लाइट का। अब इसके लिए बाबा कोई मेहरबानी नहीं करता, इसके लिए आप हम सबको मेहनत करनी पड़ेगी, व्यक्तिगत मेहनत करनी पड़ेगी। इमर्ज करो कि मैं एक आत्मा लाइट हूं, मन और बुद्धि से बिल्कुल स्वच्छ हूं, पवित्र हूं, निर्मल हूं, नम्रता मेरा कवच है, मैं नम्र चित्त हूं, सरल चित्त हूं, मैं बहुत शुद्ध और पवित्र आत्मा हूं। ये चिंतन करो और इस चिंतन से आत्मा के चारों ओर बहुत सुंदर आभा मंडल ओरा बनेगा। उस ओरे को, उस आभा मंडल को कोई भी नेगेटिव वृत्ति वाला डिस्टर्ब नहीं कर सकता। कितना भी दुश्मनी के भाव से हमारे सामने आए, कितने भी गलत ख्याल से आए, आपने सुना होगा जब बाबा के समय ये पवित्रता की बात बाबा बहुत दृढ़ता के साथ कहते थे तो कई घरों में झगड़े हो गए थे और लोगों ने बाबा को ही खत्म कर दो ये प्लान कर लिया कि बाबा ने, उसी बाबा को तो कोई पहचानता ही नहीं था कि शिव बाबा कह रहा है, ब्रह्मा बाबा नहीं कहता। तो लोगों ने प्लान बना लिया कि ब्रह्मा बाबा को खत्म कर दो, सब काम पूरा हो जाएगा। कौन इनको ये ज्ञान दे रहा है ऐसा कि घर घर के अंदर झगड़े हो गए पवित्रता के कारण, खान पान की शुद्धता के कारण। तो कुछ एक लोगों ने 5-6 लोगों को तैयार किया, पैसा दिया कि जाओ दादा को खत्म करके आ जाओ। जब वो आए गेट के अंदर तो बहनों को लगा कि ये कोई बहुत गलत भावना से आए हैं। उनको देख करके बहनों को डर लगने लगा। बहनों ने कहा आप रुको यहां पर, बाबा को देखते कहां हैं, मुझे बाबा से ही मिलना है और कोई से काम नहीं मेरा। बहनें उनको रोक करके एक बहन दौड़ के बाबा के पास गई, बाबा को बोला बाबा ऐसे ऐसे बुरे विचार से आए हैं, कुछ मुझे तो गलत वाइब्रेशन उनके लगते हैं, क्या करना। बाबा ने कहा बच्चे आए हैं ना, बच्चों को आने दो, रोकना नहीं, आने दो, क्योंकि बाबा को पता था तो जबरदस्ती भी आएंगे। और बाबा अपनी लाइट की योग की मुद्रा में बैठ गए गद्दी पर। जो उन्होंने प्रवेश किया गेट के अंदर, बाबा वहां से गुम होकर लाइट के शरीर से उनको गुरु नानक के दर्शन हो गए। वो सिख फैमिली से थे, सिख लोग थे जो मारने आए थे। बाबा को देखा कि तो बाबा है ही नहीं यहां पर, ये तो गुरु नानक देव बैठे हुए हैं। उस पैरों के नीचे ऐसे लेट गए। बाबा को पता ही नहीं क्या हो रहा है। बाबा ने कहा बच्चे उठो, बच्चे उठो। बाबा अपने उसमें उनको उठाने की कोशिश कर रहा है और वो तो गुरु नानक के दर्शन करके प्रसन्न हो गए। थोड़ी देर के बाद जब बाबा को देखा तो कहने लगे बाबा मेरे से बहुत बड़ी भूल होने वाली थी, आप साक्षात गुरुदेव हमारे बैठे हैं यहां पर और लोगों ने कहा इनको मार के आ जाओ। बच्चे उनका दोस्त नहीं है, तुम्हारा भी दोस्त नहीं है, उनको पता ही नहीं है कौन है वो। बाबा ने उनको बहुत प्यार से टोली प्रसाद खिलाया अपने हाथ से और दृष्टि दी और विदा कर दिया। चुपचाप माफी मांग के चले गए। कौन सी शक्ति थी, विचार करके देखना, ये बाबा की वो तपस्या थी, वो लाइट की ड्रेस उनके लिए वो सुरक्षा कवच था। हम सभी भी इसकी प्रैक्टिस करें, सुनो नहीं ऐसे, ताली नहीं बजाओ इस पर, लेकिन ध्यान देना, ताली बजाने की जरूरत नहीं है। अभ्यास करके देखो मैं आत्मा एक लाइट हूं और मेरे चारों ओर एक बहुत सुंदर प्रकाश की लाइट है, मैं बहुत पवित्र विचारों में रमण कर रहा हूं और बाबा की पवित्रता की किरणें मेरे ऊपर सफेद आकर के मेरे आभा मंडल को बढ़ा रही है। योग में क्या करते, यही प्री विचार कर लेना। ऐसे शुद्ध पवित्र संकल्प रच करके अपने घर से बाहर निकलो, अपने साथ वो लाइट लेकर के निकलो। जैसे मेरे चारों ओर वो लाइट है, मैं लाइट के अंदर चल रहा हूं, ये आपके लिए सुरक्षा कवच है, सबके लिए। और कलयुग के अंदर जब बहुत प्रकार की आसुरी शक्तियां प्रयोग की जा रही हैं, ऐसे समय में हम सबको अपना अपना सुरक्षा कवच खुद बनाना है। श्रीमत मर्यादाएं हमारा सुरक्षा कवच है। जो बाबा ने हम सब के लिए बाउंड्रीज बनाई हैं, ऐसा नहीं समझना कोई बंधन है ब्राह्मणों के लिए, ये हमारी सुरक्षा के लिए हैं, कलयुग में बचत के लिए हैं, बचाने के लिए हैं। क्यों नहीं हम बाहर खा सकते, क्या है? लोग कहते हैं कई बार कि आप लोग 20 साल 25 साल से योग करते हो, तपस्या करते हो, एक दिन मेरे यहां खा लोगे तो क्या आप अछूत हो जाओगे? आप हमको इतने समय से खिला रहे हो, आप हमको योगी नहीं बना पाए, और एक दिन हमारे पास खा लोगे तो आप योगी से भोगी बन जाओगे। विचार करना, हम नहीं खाते हैं। क्यों नहीं खाते हैं? अगर खा लेंगे तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। लेकिन बाबा ने एक नियम बनाया है, जो कर्म हम करेंगे हमें देख सब करेंगे। अगर आप गलत कुछ कर रहे हो, कहीं भी मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हो, तो आपके पीछे वाले कहेंगे बड़ा भाई 10 साल वाला 20 साल वाला भी ऐसे खाता है किसी के घर में, मैंने खा लिया तो क्या हुआ। अब उसको ये नहीं पता उसके पास योग की पवित्रता की शक्ति है और मेरे पास नहीं है, मेरे ऊपर असर हो जाएगा। इसलिए अगर मुझे देखकर किसी ने गलत सीख लिया तो उसका भी दोषी मैं बन जाऊंगा। इसलिए कड़े बंधन है, बहुत परहेज से चलना है। ईश्वरीय नियम और मर्यादाएं हमारी सुरक्षा का कवच है। अमृत वेले उठते हैं, मुरली क्लास में जाते हैं, सफेद ड्रेस पहनते हैं, शुद्ध शाकाहारी पवित्र हाथों का बनाया हुआ भोजन खाते हैं, अच्छे संग में रहते हैं, पर चिंतन पर दर्शन कहने वाले से किनारा करके रहते हैं, अपनी मस्ती में रहते हैं, अपना चिंतन करते हैं, दूसरे के प्रभाव दबाव में नहीं आते। ये सब हमारे लिए मर्यादाएं हैं, हमारी स्मृति के लिए, हमारी वृत्ति के लिए, हमारी दृष्टि के लिए, हमारे बोल के लिए, हमारे कर्म के लिए मर्यादाएं हैं। और जो ब्राह्मण आत्माएं दृढ़ता के साथ इन मर्यादाओं का पालन करते हैं, माया उनके आगे बिल्कुल बिल्ली बन जाती, कुछ नहीं कर सकते, कभी अटैक नहीं करेगी, कभी शेर नहीं बनेगी। आप सब ध्यान देना, ये मर्यादाएं हमारे लिए सुरक्षा कवच हैं। अलबेले नहीं बनना, बेपरवाह नहीं बनना, जो तीसरी बात मैं कह रहा था, अलबेलापन, आलस्य और बेपरवाह। परवाह ही नहीं मर्यादाओं की, चल रहे हैं, ब्राह्मण बने हैं, जहां आया वहां खा लिया, जैसा आया वैसा पहन लिया, और जो आया वो मुंह से बोल दिया। अरे बोल के लिए मर्यादा है, बच्चे क्या बोल रहे हो मुख से? किसी के लिए भी कुवचन तो कभी नहीं बोलना, ये सत्य वचन है, कभी भी सिद्ध हो जाएंगे तो सामने वाली आत्मा श्रापित हो जाएगी। इसलिए एक एक बोल बड़ा अनमोल है। जो आया बोल दिया, जब आया बोल दिया, जो आया खा लिया, जब आया खा लिया, नहीं। ब्राह्मणों के लिए ईश्वरीय नियम और मर्यादाएं एक बहुत बड़ी बाउंड्री हैं। प्रतिज्ञा करो, कुछ भी हो जाए, मरेंगे मिटेंगे, लेकिन ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं से हटेंगे नहीं, डटे रहेंगे, कुछ भी हो जाए तब सुरक्षा होगी। तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता, कितना भी विकारी वातावरण हो, कितनी भी विकारी भावना वाले लोग हमारे सामने आ जाएं, गलत दृष्टि वृत्ति वाले आ जाएं, मुझे हलचल में नहीं ला सकते। कभी ये नहीं कह सकता है क्या करूं, मेरे ऑफिस का, मेरी दुकान का, मेरे घर का वातावरण खराब था। बाबा कहता है बच्चे, एक छोटी सी अगरबत्ती गंदगी के वातावरण को बदल देती है, और आप पवित्र आत्माएं किसी भी नेगेटिव वातावरण के प्रभाव में आ जाती। विचार करके देखो, इतनी शक्तिशाली स्थिति बना करके रहो जो बाह्य वातावरण का आपके ऊपर प्रभाव न पड़े। प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है जो मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं, जिनको परवाह ही नहीं मर्यादाओं की, कभी ध्यान ही नहीं देते स्मृति के लिए क्या मर्यादाएं हैं। विचार किया है? स्मृति के लिए, स्मृति माना याददाश्त के लिए, सिर्फ बाबा की याद में रहना ही मर्यादा नहीं है, लेकिन पास्ट की जो बातें उनको भूलना मर्यादा है। बिंदी लगा देना, चिंतन नहीं करना, पास्ट को भूतकाल कहा जाता है, और तीन भूत बहुत परेशान करते हैं, ध्यान देना। एक भूतकाल, जो बीत गई बातें, जो कुछ बीत गया, बाबा कहता है फुल स्टॉप, पास्ट इज पास्ट, भूत को याद करोगे तो परेशान करेगा। बीती को चितवो नहीं, आगे की रखो नाश, वर्तमान को अच्छा बना दो। आज का दिन अच्छा होगा, कल निश्चित अच्छा होने वाला है। जो होगा सब अच्छे से अच्छा होगा, ये ड्रामा हमें सिखा रहा है। इसलिए एक भूत भूतकाल है जो विस्मृति में अगर रहा, बीती बातें अगर स्मृति में चल रही हैं, तो कभी खुशी का, मौज का, आनंद का, ब्राह्मण जीवन के भाग्य का अनुभव नहीं होगा। दूसरा भूत विकारों का, जो बाबा रोज कहता है, काम क्रोध, ये छिपे हुए भूत अंदर बैठे हैं, कभी न कभी अटैक कर देते हैं। लोभ मोह अहंकार दिखाई देते हैं। इसलिए इन भूतों से अपने को बचाना, भूतनाथ की याद से, बाबा हमारा भूतों को भगाने वाला मालिक हमारे साथ है, कुछ नहीं ये भूत कर सकते। और तीसरा, भटकती हुई आत्माएं भूत हैं, उनके ऊपर अटैक करती हैं जो इच्छा रहित हैं, इच्छाएं लेकर के चलते हैं। बाबा कहता है, बच्चे तुम अपने लाइट के घेरे में बहुत शुद्ध पवित्र विचारों में रमण करो, कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। डरो नहीं, घबराओ नहीं, भागो नहीं, अपनी लाइट के स्वरूप को बढ़ाओ, बहुत पवित्र शुद्ध वातावरण बना दो। जहां पवित्रता का वातावरण है, वहां अपवित्र आत्माएं सन्मुख नहीं आती। ध्यान देना, हम सब अपनी स्मृति की मर्यादाओं को चेक करें। वृत्ति की मर्यादाएं हैं, कोई भी आसक्ति न हो, वृत्ति बड़ी उपराम हो, अनासक्त हो, न्यारी हो, प्यारी हो। दृष्टि के लिए मर्यादाएं हैं कि आत्मा को देख करके बात करो, नीच ऊंच का भेदभाव नहीं रखो, सब आत्माएं हैं, सब भाई भाई हैं, ये मर्यादाएं मिली हुई हैं। बोल के लिए मर्यादाएं हैं, कम बोलो, धीरे बोलो, सम्मानजनक बोलो, जो आवश्यक है वही बोलो, बाकी नहीं बोलो। कर्म के लिए मर्यादाएं हैं, सुख दो सुख लो, कर्म करो समर्पित कर दो, अभिमान में नहीं आओ। आप सब इन मर्यादाओं की लिस्ट जरूर अपने पास रखना, अगर मर्यादाएं उल्लंघन हो रही हैं तो कोई भी बचाने वाला नहीं है, माया कहीं भी अटैक करेगी, वो सुरक्षा कवच है। चौथा सुरक्षा कवच मैं बताता हूं आपको, वो है अपने इस ब्राह्मण परिवार की दुआएं। हर एक ब्राह्मण आत्मा को ये पक्का करना है कि मुझे कोई भी आत्मा बद्दुआ न दे, सबकी दुआएं मिले। और उसका साधन है, सुख दो सुख लो, समय पर साथ दो, मदद करो, सहयोग दो, संतुष्ट रहो और सबको संतुष्ट करो, दुआएं मिल जाएंगी। और जिसके पास दुआएं हैं, कुछ भी माया उसका बिगाड़ नहीं सकती, कोई भी बिगाड़ नहीं सकता। कितना भी बड़ा पेपर आ जाए, शरीर का आ जाए, परिवार का आ जाए, संबंधों से आ जाए, धन का आ जाए, समाज का आ जाए, किसी भी प्रकार का पेपर आए, आप उसमें सुरक्षित रह सकते हैं अगर बहुत समय तक सबकी दुआएं जमा की हैं, सबको समय पर साथ दिया है, मदद की है, सुख दिया है, सुख लिया है, तो कोई कुछ भी आपका कर नहीं पाएगा। करेगा तो थोड़े दिन के बाद सत्य सिद्ध हो जाएगा, आप मुक्त हो जाएंगे। इसलिए दुआएं बहुत मदद करती हैं। और हमारे ब्राह्मण परिवार की आत्मा, मैं तो यही कहता हूं, न निमित्त आत्मा कभी बद्दुआ दे, न हमारे साथी सहयोगी कभी भी डिस्टर्ब होकर के ये न कहें ये तो ठीक नहीं है, ये भी बद्दुआ है। हम सब ध्यान दें, ये हमारा सुरक्षा कवच है। और सबसे बड़ा सुरक्षा कवच, समय अनुसार बाबा की याद की छतरी है, छत्र छाया के रूप में। और वो छतरी तब मिलती है जब हम बहुत आज्ञाकारी सपूत सच्चे दिल वाले हैं। बाबा की छतरी का अनुभव होता है, वो मेरे साथ साथ है, अलग नहीं हो सकती। और बाबा की छतरी लेकर के जो चलता है, जैसे बरसात आती है धूप आती है तो क्या कहते हैं, छतरी लगा लो, लेकिन छतरी भी मजबूत चाहिए, नहीं थोड़ी सी हवा आएगी तोड़ जाएगी। आठों तिलिया मजबूत चाहिए, बाबा के याद की छतरी में आठों शक्तियां चाहिए। कहीं सहन करना पड़ेगा, कहीं सामना करना पड़ेगा, कहीं समाना पड़ेगा, कहीं समेटना पड़ेगा, कहीं परखना पड़ेगा, कहीं निर्णय करना होगा। तुरंत ऐसे नहीं क्या करूं, बुद्धि डिस्टर्ब थी, मैंने समझ नहीं पाया तो हार हो जाएगी। बाबा के याद की छतरी छत्र छाया का काम करती है, सुरक्षा का काम करती है। अगर वो छतरी सबने लगा के रखी है तो कोई भी कुछ नहीं मेरा कर सकता। अनुभव करके देखना, जहां जाओ बड़ी अच्छी विधि है, हर एक विधि पूर्वक चलेंगे ना तो सिद्धियां मिलेंगी। ऐसे नहीं जो आया कर रहे हैं, जैसे आया कर रहे हैं, मुरली सुन लिया भूल गए। एक बहुत अच्छी विधि मैंने कई भाइयों के घर में देखी है, भाई बहनों ने बना के रखी है, जैसे भोग लगाने की विधि है। भाई कोई भी बात, कोई भी चीज घर में बनती है, जहां परिवार ज्ञान में चलते हैं, बाबा को अलग बर्तन में भोग लगाना है, विधि है। उसमें बाबा कहता मैं खाता तो नहीं हूं, लेकिन खिलाने वाले को अगर आप खिलाओगे नहीं तो चोर हो। बड़ी शर्त है ये, ऑफर तो करो, शुक्रिया बाबा जो आप इतना सब खिला रहे हो, जो लोग भूखे मर रहे हैं और आप हमको इतने वैरायटी, इतना सुंदर पवित्र शुद्ध भोजन खिलाते हो, बड़े प्यार से बाबा को ऑफर करो। लेकिन वो भोग ऐसा हो जो इतनी शुद्धता से बना हुआ हो जिसमें किसी की नजर न पड़े। वो शुद्ध भोजन जिसको भोग लगाया, वो सारे भोजन में मिला करके फिर सबको खिलाओ, विधि है, कुछ नहीं होगा। अगर कोई विघ्न डालने वाली आत्मा होगी, कोई के बहुत विकारी संस्कार होंगे, और आपने अगर शुद्ध पवित्र भोग बाबा को खिला के उसकी शक्तियां उसमें डाल दी, फिर वो भोग खिलाओगे तो उसके विचार शांत शीतल हो जाएंगे, कर्म इंद्रियां शुद्ध और पवित्र हो जाएंगे। प्रयोग है, करके देखो। और ये विधियां हैं अपनी विकारों से सुरक्षा करने की विधि। ऐसे नहीं कहो क्या करूं, मैं तो ठीक हूं लेकिन सामने वाले की वृत्ति ठीक नहीं है, वो बड़ी चंचल वृत्ति वाला है या वाली है, कंप्लेन करते हैं कई लोग, मैं तो ठीक हूं लेकिन मेरे ऊपर उसका असर हो रहा है, माना कहीं ना कहीं तो कुछ लूज हैं। अब उसको समाप्त करने के लिए अगर हम चाहते हैं तो विधियां अपनाएं, और ये विधियां हैं अगर माताएं विशेष करके बात ध्यान रखें कि ऐसा शुद्ध सात्विक पवित्र भोजन जो भगवान को भोग लगाया जाए और फिर सबको खिलाया जाए, सबकी वृत्तियां स्वच्छ हो जाएंगी, कर्म इंद्रियां शीतल हो जाएंगी। दूसरी विधि एक जरूर अपना के देखना, जब भी घर से बाहर निकलो, कितना भी अर्जेंट काम हो, एक मिनट बाबा के कमरे में बाबा की दृष्टि लेके निकलना, बाबा से ये बात करो, रूह रिहान करो, जैसे कोई बड़े से छुट्टी ली जाती है कि बाबा इस कार्य के लिए हम जा रहे हैं, आप मेरे साथ चलो, आप मुझे मदद करना, आप तो सदा मेरे साथ हो। ऐसे रूह रिहान करके, बाबा की शक्ति लेकर के, सकास लेकर के फिर साथ में चलो। विधि अपना के देखो, सिद्धि मिलेगी। भूल गए, बाबा ने एक बार यहां पर हमारा एक ग्रुप विदेश में गया था, जब पहला ग्रुप विदेश में गया तो बाबा ने उनको कहा कि कहीं पर सेवा के लिए जाना, लेकिन जब कमरे से निकलना, फाइनल जाने का समय हो एक मिनट के लिए बाबा के कमरे में जाके बाबा के चित्र के आगे खड़े खड़े भी बहुत प्यार से छुट्टी लेना और बाबा को बता के जाना, बाबा ये कार्य के लिए मैं जा रहा हूं, इस सेवा पर निकल रहा हूं, आप मेरे साथ चलो। कहते एक बार बहुत जल्दी जल्दी कहीं से फोन आया और बहुत ऊंचाई पर बहुत बड़ी मंजिल थी, 7-8-10 फ्लोर वाली, वहां ठहरे थे सब भाई बहने, निकल गए ताला लगा के भूल गए, फिर नीचे आए कोई चीज भूल गए, फिर ऊपर गए, 2-3 बार लिफ्ट से उतरे चढ़े, समझ में नहीं आया ऐसा क्यों हो रहा है कि जल्दी है जाना है और पता नहीं क्या हो रहा है। फिर संदेशी से पूछवाया कि क्या कारण है जो आज इतनी जल्दी जाने के बाद भी बार बार कोई ना कोई चीज हम कमरे में भूल रहे हैं। तो बाबा ने कहा वो भूल नहीं रहे हो, तुमने बहुत बड़ी भूल की जो जाते समय बाबा को छुट्टी नहीं ली है। आप सब ध्यान देना इस बात को, बाबा सर्व शक्तियों से हम सब के साथ है और अव्यक्त रूप में बाबा की बहुत फास्ट स्पीड है। साकार का तो बंधन था, अभी तो बाप दादा दोनों समान हैं। बाबा के अव्यक्त होने के बाद 140 देशों में सेवा केंद्र चल रहे हैं और किसी भी कोने में बैठा हुआ बच्चा समझता है बाबा मेरे साथ है। कितना सुंदर संबंध है, इतना प्यारा संबंध है, किसी भी स्थान पर बैठ के दिल से कोई कहे बाबा और बाबा उसके सामने हाजिर हो जाता है। उसकी स्पीड कितनी है, रॉकेट भी उसके आगे कुछ नहीं है, 1 सेकंड लगता है बाबा कहो प्यार से, लेकिन कहना ही भूल जाएंगे तो क्या होगा। सच्चे दिल पर साहेब राजी, वो भी ध्यान देना, दिखावे वाला योग नहीं चाहिए। कथनी एक है करनी दूसरी है, बाबा कभी खुश नहीं होगा। इसलिए बहुत सच्चे दिल से समान बन करके बाबा के सामने खड़े हो जाओ, बाबा की दृष्टि लो और बाबा को दिल में कहो बाबा आप कराने वाले हो, मैं तो आपका इंस्ट्रूमेंट हूं, जो आपको कराना है करा लो। प्रयोग करके देखो, 100% सफलता अवश्य मिलेगी। इसलिए बाबा हमारा संगम पर साथी है, हमारे लिए सुरक्षा कवच है, बाबा की जैसा सुरक्षा कवच और कोई हो ही नहीं सकता। तो इसलिए हम कहते बाबा की याद को सुरक्षा कवच बना लो और इस सुरक्षा कवच के लिए ध्यान देना, बाबा की आज्ञाएं सिर माथे है, एक भी आज्ञा का उल्लंघन न हो। जो बच्चे आज्ञाकारी हैं, वफादार हैं, फरमानवरदार हैं, ईमानदार हैं, बाबा उनके रक्षा के लिए बंधा हुआ है। इसलिए कभी भी कोई भी श्रीमत आज्ञा उल्लंघन न हो। तो हम सब ब्राह्मण बच्चे इस सुरक्षा कवच को सदा साथ रखें। माया के राज्य में कितना भी तूफान है, कितना भी विकराल रूप माया का है और कितना भी विकराल रूप प्रकृति का हो, प्रकृति पति आत्माएं जिन्होंने अपनी इस प्रकृति को जीता है, जिन्होंने अपनी नेचर रूपी प्रकृति को जीता है, ये प्रकृति के तत्व उनका नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन प्रकृति जीत स्थिति में रहना होगा। ये 5 तत्वों की प्रकृति, ये कर्म इंद्रियां हैं, तो कर्म इंद्रिय जीत ही प्रकृति जीत है और प्रकृति जीत ही विक्रमा जीत है और विक्रमा जीत ही कर्मातीत बनता है। इस पर विचार करना, ठीक है। तो हम सब बाबा के बच्चे माया और प्रकृति के साम्राज्य में रहते हुए भी इस ब्राह्मण जीवन में सदा सुरक्षा का अनुभव करें, उसके लिए इन सब बातों को अंडरलाइन करना। ओम शांति। अभी जल्दी उठना नहीं, 3 मिनट के लिए सब देह से डिटैच हो जाओ, अपने इस भ्रकुटी आसन पर बैठ करके अपने चारों ओर एक सुरक्षा कवच का अनुभव करो और उसी सुरक्षा कवच को साथ लेकर के कमरे तक जाना, बीच में आवाज में नहीं आना।